के साथ सुग्रीवादी के पास में जाऊंगा, बांदरों के पास जाऊंगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज क्रुद्ध होकर के खूब विशाल रूप बनाए अपना, हनुमान मारुति भीम पराक्रम है, और विशाल अपना रूप बना करके जो उसी किलकारी लगा करके, और ये वृक्ष उठाया वो वृक्ष फेंका, उस वृक्ष को तोड़ा उनको उस फेंका, इधर उधर फेंक दिया। अब वो वहाँ जितने पक्षी थे पशु थे इधर उधर बड़ी बड़ी भगदड़ मच गई। जहाँ की नदियाँ से देखी ये कृत्रिम नदियाँ तालाब है उनमें ले जा करके वृक्षों को पटकना, और वहाँ पर जो है पर्वतों के टुकड़े लाला कर डालना, इधर डालना उधर डालना, चूर्णते पर्वताग्रश्च, और शिखरों को पकड़ पकड़ के तोड़ करके उनको फेंकना, बड़ा कोलाहल मचाया। अब वो अशोक वाटिका थी, जो अशोक वाटिका बड़ी सुंदर थी, उस अशोक वाटिका को उस समय में तोड़ ताड़ करके सारी सुंदरता उसकी नष्ट कर दी। वो ऐसे लगने लगी जैसे कोई गर्मी के अंदर लता होती है पीली पड़ी हुई, वो जमीन पर पड़ जाती है, ऐसे अशोक वाटिका दिखाई दी। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लता दिए थे, ऐसी लताएं जिनके घर बने हुए हो पूरी छाया, सब उतार के फेंक दिया। बड़ी चित्रकारियों के मकान भी उनको फेंक दिया, पशु पक्षी आदि के चित्र थे उन मकानों को भी तोड़ दिया, और वो अशोक वाटिका एकदम जंगल जैसी बन गई। शोक संतप्त जैसे प्रिय के वियोग में प्रिया रहती है, ऐसे अशोक वाटिका को उन्होंने बना दिया, और बना करके उसमें जोर जोर से वो किलकारियां माल करके ताल ठोक ठोक करके, और बड़ा बड़ा उत्साह दिखाते हुए वे वहाँ पर जो है फिर वृक्षों को उखाड़ रहे हैं। हनुमान जी की जब किलकारी सुनी और पक्षी लोग सब घबराते हुए बोले, और वृक्षों की धाड़ धाड़ करके गिरने की आवाज सुनी, तो लंका का एक एक प्राणी अपने अपने काम को छोड़ करके और बड़ा आश्चर्य में डूबी, कोलाहल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जितने में आकाश से देखा करे पक्षियों का झुंड यूं जा रहा है। अशोक वाटिका को छोड़ करके पक्षी जा रहे, पशु भी फांद फांद करके जा रहे, अशोक वाटिका के जो चार दीवारी उसको फांद फांद के जा रहे हैं। राक्षसियां उस समय में घबराई, और कई राक्षसियां नींद में पड़ी थी बेसुध हुई एकदम उठी और उठ करके इधर उधर देख रही है, क्या हो गया क्या हो गया, अरे क्या क्या हो गया, जिस वृक्ष के पास में हम पड़ी वो वृक्ष जो है उखाड़ करके पटक दिया गया, किसने पटका, उस बंदर ने पटका, अरे वो बंदर, अरे बंदर तो हमने देखा था अपनी सीता के पास में। राक्षसियां आई आकर के कहने लगी, ए सीते कौन बंदर है, कहां से आया है, कहां का है, क्यों आया है, तेरे साथ क्या बात हुई है, सब बात हमको बताओ, नहीं तो सीते हम तुम्हें शस्त्र से काट देंगे, तुम बताओ कि कौन बंदर तुमसे क्या बात करके गया है। सीता ने बड़े निश्चिंत होकर के और बड़े थोड़े शब्दों में जवाब दिया, ए राक्षसी तुम लोगों की गति का कुछ पता नहीं, मैं यहाँ लंका के अंदर लाई गई हूँ, मैं लंका में आई नहीं हूँ, मैं लाई गई हूँ, अतः यहाँ के आए हुए व्यक्तियों को मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये मेरा देश नहीं है, और ये राक्षस लोग क्या क्या रूप यहाँ बनाते रहते हैं इस विषय में राक्षस लोग ही जाने, मैं क्या जानूं, मुझे कुछ पता नहीं। अहि रेव अहि पादान विजानाति राक्षस्य, हे राक्षसियों जैसे सर्प के चिन्ह को सर्प ही जानता है दूसरा कोई नहीं जानता, ऐसे आप लोगों की लीला आप लोग ही जानो, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जानती, मैं तो बाबा वो आया मैंने तो उसको राक्षसी समझा था, मैंने उसको राक्षसी समझा, बिल्कुल सच्ची बात है, इसलिए सीता जी ने कहा मैंने तो उसको राक्षसी समझा, अब तुम जाओ तुम उससे बात करो, ये क्या रूप बनाकर कौन आते, मेरा दिमाग क्यों खराब करो, मैं तो आगे बहुत दुखी हुई हुई हूँ। सीता के वचनों को सुनकर के राक्षसियों ने सोचा कि बेचारी बात तो सही कहती है, इसका यहाँ जान पहचान का यदि कोई आ जाता है तो हम बराबर बोलती है कि कोई तुम्हारे को यहाँ लेने के लिए आ नहीं सकता है, ये कोई राक्षसी है या और कोई है, पर इसको जानना भी तो बड़ा मुश्किल है, अरे अपना काम है जल्दी से जल्दी महाराज रावण से निवेदन करो, यदि रावण से निवेदन नहीं करेंगे तो वो महाराज हमको दंड देंगे, जाओ जाओ निवेदन करो। राक्षसी आ गई और रावण से निवेदन किया, महाराज की जय हो। हे महाराज, आज एक बड़े कष्ट का समाचार आपको सुनाते हैं। क्या हुआ? आपकी जो अशोक वाटिका है उसके अंदर एक विशाल शरीर वाला वो बंदर आया है। उसने सीता के साथ कुछ बातचीत भी की है, बड़ा पराक्रमशाली है और वो सीता के पास आया। हमने सीता से बहुत बार पूछा कि सीते बताओ तुम्हारी उसके साथ क्या बातचीत हुई, तुम बताओ। लेकिन सीता ने कहा कि हमको पता नहीं, हम नहीं जानते। तुमने सीता को पूछा कि क्या बातचीत हुई? वो आया जब तुम कहाँ थी? तुम वहां पर बातचीत में खुद क्यों नहीं चली गई? ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। ऐसा कैसे कि हम सो रहे थे? ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। कौन हो सकता है? हमारे विचार से महाराज, या तो इंद्र का दूत है या कुबेर का दूत है, और या सीता की खोज के लिए शायद राम का भी कोई दूत हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि उसका पराक्रम बड़ा अद्भुत है। ओ महाराज, कितने कितने पशु, कितने कितने पक्षी वहां रहते हैं। उसने एक किलकारी लगाई जोर से, किलकारी लगाने मात्र से सब भाग गए। पशु भी उनके सामने डर गए, एक आवाज से डर गए। क्या करता वो? लेकिन डर गए, इतना उसमें बल है। उसने उठा उठा करके उन वृक्षों की जिनकी जड़ें बहुत गहरी है उनको जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दिया। इतना बल है उसमें। देखो वृक्ष को उखाड़ोगे जड़ें नहीं निकले, जड़े के ऊपर कितनी जमीन रहती है, कितना उसमें भार है। लेकिन उसने तो तना पकड़ कर जोर से कस के उसको फेंका तो वो जो है कहीं का कहीं गिर गया। सारे वृक्ष उखाड़ के फेंक दिए पर एक वृक्ष जिसके नीचे सीता बैठी थी केवल उसको बचाया है। इसका अर्थ तो यही लगता है कि कुछ न कुछ बानर का राम के साथ संबंध हो सकता है। सीता की रक्षा के लिए, सीता की परीक्षा के लिए किसी न किसी उपाय से वो आ ही गया है। और सीता का वृक्ष तो एकदम खूब पत्तों वाला है, फलों वाला है, लेकिन उस वृक्ष को क्यों बचाया उसने, उस समझ में नहीं आता है। सीता से बातचीत की है इसलिए कुछ सीता के साथ में, राम के साथ में और इनके साथ में कोई इनका इनका कोई न कोई संबंध जरूर होना चाहिए। इसलिए हे राक्षसराज, कह सीता अभिभाषित है। सीता के साथ तो वही बात कर सकता है कि जिसके प्राण थोड़ी देर ही रहने वाले हैं। अच्छी बात, क्योंकि सीता तो आपके मन में बैठी हुई है। वो आपके मन में बैठी हुई सीता से दूसरा आदमी कैसे बात कर सकता है? हम अभी उपाय करते हैं। ऐसा कहकर के रावण ने वहां पर किन्नर नाम के सैकड़ों राक्षस से उन राक्षसों को कहा कि हे किंकरों, किंकर नाम किन्नर ने किंकर, हे किंकरों तुम जाओ और जहां तक हो सके उस बानर को देखो और उस बानर को तुम ले आना। या तो उसको जीते जी ले आना और तुम्हारे जीते जी कब्जे में नहीं आए तो बात अलग है। वो किंकर सैकड़ों नहीं थे, बता रहे 80,000 वो 80,000 किंकर थे। 80,000 किंकर आए और हाथ में शस्त्र लेकर के आए, खूब बड़ा बड़ा उनका पेट खूब बड़ा बड़ा और उनके दांत बड़े बड़े बड़े, घोर उनका रूप, युद्ध के अंदर वो बड़े उन्मादी। वे सब अपने हाथ में शस्त्र लेकर एक साथ हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। घेर करके गदाओं की, घोटों की और दूसरे शस्त्रों की हनुमान जी के ऊपर जो है चोटें पहुंचाई। हनुमान जी महाराज, उन्होंने देखा कि इनसे मैं घिर गया हूँ, तो हनुमान जी जोर से ऊपर से उछल गए तो शस्त्र फेंके हुए वहीं आपस में शस्त्र वहां ऐसे रह गए। और हनुमान जी ने देखा कि भाई और तो कुछ है नहीं, कभी कभी भाई जो ओसान मिल जाए वही शस्त्र है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली और पूंछ लेकर एक जोर से उसको घुमाया, पूंछ को घुमाया, सारे वहां पर गिर गिरा के खत्म हो गए। उस पूंछ की प्रताड़ना से उनको दिखना बंद हो गया, उनके शस्त्र चलने बंद हो गए और उनकी पूंछ से बराबर वहाँ पर जो है वो घायल होने लगे, मरने लगे। हनुमान जी महाराज से उन लोगों ने पूछा था कि बानर तुम कौन हो, तब हनुमान जी ने जो बात कही, ये चार श्लोक है ना, ये बहुत काम आते हैं वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी ने कहा, जयति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो अहं कुशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिली समृद्धार्थो गमिष्यामि निशतां सर्वरक्षसां स्यावर रामचन्द्र की लक्ष्मण की महाराज सुग्रीव की कौशलेंद्र महाराज श्री राम का मैं दूत हनुमान आपकी लंका में आया हूँ, एक नहीं हजार रावण मेरे साथ युद्ध करने लगे तो अभी मैं उनसे किसी प्रकार से हारने वाला नहीं हूँ, बुला लाओ तुम अपने राजाओं को, लिया तुम्हारे शस्त्र और मैं सारी लंका को अभी नष्ट करके यहाँ से जा रहा हूँ और सब राक्षस लोग देखते रहेंगे, मैं अपना पूरा काम करके जाऊंगा, जाकर सुना दो जिसको कहना है उसको सुना दो। ऐसे जोर से हनुमान जी महाराज बोले तो सन्नाद शब्देन भय शंकिता, उनके बोलने से बड़े भयभीत हो गए और हनुमान जी महाराज ने बड़े कुपित होकर के अब उन्हीं के शस्त्र लेकर के उन्हीं को ही मारना चालू किया। बहुत बड़ी सेना थी, आखिर 80,000 थे, लेकिन राम जी महाराज के दूत ने सबको मारना चालू किया, मारते मारते 80,000 को पूरों को वहां पर मार दिया और हनुमान जी सोचने लगे कि अब तो युद्ध बढ़ेगा ही तो मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए। उस अशोक वाटिका को देख करके लंका का रास्ता इधर से है तो वो उधर ही जाकर के हनुमान जी महाराज आएंगे, सब इधर से आएंगे, बड़ा दरवाजा दरवाजे के पास ही वो खड़े हो गए मुद्गर लेकर के आने, जो जो आएंगे जो तो हम हमको प्रसादी दे दे करके आते चले जाएंगे और हमारा काम बनता चला जाएगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी खड़े हो गए। इधर निहतान किंकरान सर्वान नारायण रावणाय निवेदयन, लोगों ने जाकर रावण से कहा, महाराज 80,000 आपके किंकर नाम के राक्षस युद्ध में मारे गए। युद्ध में मारे गए? हाँ महाराज, अच्छी बात है, प्रहस्त का पुत्र था उसको भेजा और प्रहस्त के पुत्र को भेजते हुए कहा कि प्रहस्त पुत्र तुम जाओ,
कौन वो
बंदर आया है देख भाई, उसका अच्छी तरह से पता लगा ना कौन आया है,
ठीक है महाराज
सेना लेके जाओ, अच्छी बात, उधर तो आने की तैयारी कर रहे हैं और इधर हनुमान जी महाराज सोचते हैं यूं खड़े खड़े कि वनम भग्नम, मैंने इस जंगल को उखाड़ कर फेंक दिया, ये बीच में चैत्य प्रासाद है इसको भी ध्वस्त कर दो, नहीं तो जो है ये भी राक्षसों की सहायता ही करने वाला होगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी जोर से वहां से खुदकी लगा करके और उस चैत्य प्रासाद पर चले गए। वहां जाकर बहुत बड़ा उसका गुंबद बना हुआ, हनुमान जी ने हिला करके पहले पहले तो गुंबद को पटक दिया, गुंबद को पटकने के बाद फिर ऊपर की छत पटक दी, छत पटकने के बाद अब उसके जो खंबे थे वो खंबे उन्होंने वैसे ही रखे कि आने दो, अब कोई और भी तो लोग आएंगे ना, तब खंबों को काम में ले लेंगे। अब हनुमान जी महाराज दुर्धर्ष मालूम लिए और उस समय में जोर जोर से हनुमान जी ने वही बात कही, राम जी की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, सुग्रीव की जय हो, मैं हनुमान हूँ, मैं राम का दूत हूँ, अपना काम करने के लिए आया हूँ, जिसमें ताकत हो तो आ जाओ, मैं हजार रावण से नहीं डरता, ऐसे ऐसे बोले थे। तब भाई वहाँ पर बड़े बड़े चैत्यपाल थे, चैत्यपाल माने उस चैत्य की रक्षा करने वाले लोग, वो शस्त्र लेकर के आए, हनुमान जी ने उन सबको पूरा कर दिया। उनके पास बड़े शस्त्र थे, बड़े बल, बड़ा बल था उनके पास। हनुमान जी महाराज ने वहां के खंभे उठा उठा करके खंभों से मारना चालू किया पूरे हुए। और रावण को जब ये पता चला कि चैत्य प्रासाद के 100 आपके बड़े बड़े जो रक्षक थे वो भी मारे गए हैं, तब जो है रावण ने कहा कि हे प्रहस्त पुत्र, बादशाहनाम सहस्राणी विश्रिष्टानी महात्मनाम बलिनाम बांदरेन्द्राणाम सुग्रीव वशवर्ती नाम अटंती। देखो
मैंने एक बार बहुत से बंदरों को मैंने देखा है, मेरी बंदरों के साथ बड़ी मित्रता है
और बाली को भी जानता हूँ, सुग्रीव को भी जानता हूँ, बड़ों बड़ों को जानता हूँ, लेकिन भाई मैंने औरों को तो विशेषता से क्या ऐसा कोई बांदर तो मैंने नहीं देखा, बाली भी ऐसा ही नहीं था, सुग्रीव भी ऐसा नहीं था, ऐसा कौन आया है। इधर हनुमान जी महाराज खूब जोर से कहने लगे, देखो लंकावासियों आप विचार कर लो, हम आपके सामने कोई बात नहीं छिपाते हैं, आप महाराज रावण से निवेदन कर देना कि अब तुम्हारा समय आ गया है, सीता जी की खोज के लिए लाखों करोड़ों बानर पृथ्वी पर घूम रहे हैं, सब दिशाओं में गए हैं, उनका बल किसी प्रकार से कम नहीं है, वे बानर बहुत जल्दी ही लंका में आने वाले हैं, क्योंकि हमने सीता को यहाँ देख लिया है, अब ये लंका रहने वाली नहीं है, रावण को सुना देना कि तुम्हारी भी आयु अब पूरी हो रही है, अतएव महापुरुष के साथ में बैर रखकर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। इस प्रकार से ललकार रावण के पास में गई। रावण ने प्रहस्त के पुत्र जम्बूवाली से कहा, जम्बूवाली तुम जाओ, ये तो बहुत जोर जोर से चेतावनी दे रहा है, हमने बहुत से बंदर देखे हैं, बाली सुग्रीव आदि का नाम भी सुना, बाली को जानता भी हूँ, परंतु ऐसा कोई बंदर हमको झीठ बंदर दिखाई नहीं दिया, कौन ही चिल्लाता है, जाओ बेटा तुम जाकर उसका वध करके आओ। तब जो है वो जम्बू माली जो प्रहस्त का पुत्र था वो बहुत बड़े रथ में बैठ करके सब शस्त्र लेकर के और सेना लेकर के और वो गया, और जाते उसने हनुमान को देख कर एक बाण तो उसने हनुमान के सिर पर लगाया और 10 बाण हनुमान जी के भुजाओं पर लगाया, उससे हनुमान जी एक साथ बाणों का जो है प्रहार हुआ ना तो उनके शरीर में लग गए बाण, उससे हनुमान जी नीचे गुड़क गए, उससे उनका शरीर लहू लहू हो गया। इतने में ही हनुमान जी ने एक शिला उठाई, पत्थर की शिला उठा करके भागे उसकी तरफ और उसने 10 बाणों से शिला को तोड़ दिया। फिर हनुमान जी ने एक साल वृक्ष उठाया, साल वृक्ष को यूं घुमाया, उसने साल वृक्ष को भी तोड़ दिया। तब जम्बू माली के यहाँ उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा पराक्रमी है, फिर उन्होंने एक घोटा उठा लिया और घोटा उठा करके और जैसे धोबी कपड़ों के ऊपर मारता है ऐसे वो एक प्रहार उसके रथ के ऊपर मारा तो भाई रथ भी टूट गया, खुद भी मर गया और जो है वो वहीं पर पूरा हो गया। रावण को जाकर कहा कि महाराज जम्बू माली भी पूरा हो गया। राक्षस राज ने देखा कि क्या बात है, कोई बला आ गई, क्या बात है, अपने मंत्री के साथ बेटों को भेजा, बेटा तुम जाओ। बड़े वीर थे, बड़े धनुर्धारी वो वीर, वे रवाना हुए, वो रवाना होकर के आगे बढ़े, ओहो मेघ के समान वे आवाज करने वाले और घोड़ों से जुते हुए भी महारथ उनके अंदर में बैठ गए, बड़ा उनके पास में बल, बड़े अच्छे अच्छे शस्त्र। उन्होंने देखा कि भाई किंकरों को मार दिया तो क्या हुआ, हम तो है ही, और जम्बू माली को मार दिया तो क्या हुआ, हमारा बल तो हमारे ही पास में है, हम इस प्रकार से कैसे किसी प्रकार से दबने वाले नहीं है। आते बड़े बल के साथ उत्साह के साथ वे वहां से रवाना हुए, रवाना हो करके और तोरण द्वार पर आए, वहां पर आकर के सीधा उन्होंने बाणों का प्रहार करना चालू कर दिया, जैसे बरसात में एक एक बाण एक एक बूंद के साथ में दूसरी बूंद आती रहती है, ऐसे बाणों की वर्षा उन्होंने हनुमान जी के ऊपर करना चालू किया। हनुमान जी के चारों तरफ बाण ही बाण हो गए, जिस प्रकार से बड़े भारी पर्वत के ऊपर वृक्षों के फूल रहते हैं, ऐसे ही रावण के ये मंत्री के सातों पुत्रों ने इतने बाण बरसाए हनुमान जी के ऊपर, वो फूल जैसे दिखाई दिए। हनुमान जी ने देखा कि मैं तो बाणों से गिर गया हूँ, तो हनुमान जी खुद की लगा के आकाश में चले गए। आकाश में जाने पर उन बाणों का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, और फिर हनुमान जी महाराज ने आकाश से ही किलकारी लगा करके और अपने ताल ठोक करके आकाश से भी कूदे और कूद करके सीधे रथ के ऊपर कूदे, और रथ के ऊपर कूद करके जो रथ में बैठे रहने वाले थे उनको रथ से उतार करके मारना चालू किया और नख से उनको उतारना चालू किया और उन्हीं के शस्त्रों से हनुमान जी ने उन्हीं को मारना चालू किया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारा ही सिर और तुम्हारा ही जूता, ऐसे करके उनको मारना चालू किया। अब वो मारा उनको बुरी तरह से, तो वो जोर जोर से कर्राने लगे, बहुत जोर जोर से कर्राने लगे और हनुमान जी महाराज ने उनको उठा उठा के पटक दिया, सब मारे गए और लंका के अंदर बड़ा भारी कोलाहल हो गया कि जाने कौन राक्षस है। इस प्रकार से इन मंत्री के पुत्रों को मार दिया। मंत्री पुत्रों को मारने के बाद में रावण ने पांच अपने मुख्य मुख्य प्रधान सेनापति उनको कहा कि तुम लोग जाओ। तो एक तो था विरूपाक्ष, एक था युपाक्ष, एक था दुर्धर, एक था प्रघस और एक था भास्कर। ये पांच प्रधान प्रधान सेनापति, ये प्रधान सेनापति, इनको रावण ने बुलाया और बुला करके और इनको कहा कि तुम लोग जाओ और कपि शास्यताम, उस कपि के ऊपर शासन करो, जहां तक हो सके उसको पकड़ना हो और तुम जाकर के उसको ले आओ। देखो ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे वो पता चले कि कहाँ से आया है और किसने भेजा है, और जिसने भी भेजा है वो आगे सोच समझ के भेजेगा। कर्म को खूब ठीक ढंग से करना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे देश काल में बाधा पड़ जाए। और मैं तो उसको सामान्य बंदर नहीं मानता, क्योंकि बानर होने से इतना वो उत्पात मचाए ऐसे मेरे मन में विश्वास नहीं होता। मैं उसको बंदर भी नहीं मानता हूँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो इंद्र है, वो स्वयं ही आज बंदर बनकर के आया है। क्योंकि इंद्र को मालूम है कि मैं सीधा जाऊंगा तो पहचान लिया जाऊंगा, अतः छिप करके चलो, बंदर बन करके चलो और हमारी कोई बेइज्जती भी नहीं होगी, क्योंकि बंदर को पकड़ा ऐसा माना जाएगा और जो है हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। और मैंने बड़े बड़े नागों को, यक्षों को, गंधर्वों को, देवताओं को, असुरों को, महर्षियों को, सबको देखा है, ऐसा बल पराक्रम किसी ने नहीं दिखाया है। तो आप लोग जाओ, तुम लोगों के साथ में मैंने कई बार युद्ध देखा है और विजय अपने को मिली है, आप लोग निस्संदेह जाओ। और हे सेनापतियों, आपके अंदर अपार बल है, घोड़े के साथ जाओ, रथों के साथ जाओ, लेकिन कुछ भी हो कपि शास्यताम, उसका तो निग्रह करो, उसको पकड़ करके लाओ। और देखो ऐसा तुम्हारे मन में भाव नहीं आना चाहिए कि वो बानर बड़ा पराक्रमी है, ये है वो है, ऐसा नहीं आना चाहिए। अपने शत्रु को कभी भी अपने से बलवान देखो समझना भी चाहिए और नहीं भी समझना चाहिए। जब तक आक्रमण नहीं होता है तब तक आक्रमण करने की तैयारी के लिए अपने शत्रु को बहुत बलवान समझना चाहिए, लेकिन युद्ध जब चालू हो जाता है तब उसको अपने से बलवान नहीं मानना चाहिए। ओहो, मैंने बहुत से बंदर देखे हैं। देखो ये रावण है, इसका चित्त भ्रमित हो गया, वो बार बार बोलता है। मैंने बहुत से बंदर देखे हैं, मैंने बाली को देखा है, सुग्रीव को देखा है, जामवंत को देखा है, नील को देखा है, दिवित को देखा है, बहुतों को देखा है, परंतु न तो बाली में इतना बल है, न इतना तेज है, न इतना पराक्रम है, न इतनी बुद्धि है, न इतना उत्साह है और न ऐसा कोई रूप भी है जो इस बानर का हमको सुनने को मिल रहा है और आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो, देखो इस बानर से, इस बानर को पकड़ने से हमारे बहुत से काम सिद्ध होंगे। हमको सारी राजनीति का ज्ञान होगा कि लंका के बाहर क्या क्या हो रहा है, लंका के विषय में कौन क्या क्या सोचता है। इसलिए आप लोग जाओ, आप लोगों की विजय पर मुझे पूरी आशा है। इसलिए आप अपनी भी रक्षा करना और बानर को किसी प्रकार से पकड़ के ले आना। देखो एक बात है, युद्ध सिद्धिर चंचला, युद्ध के अंदर सफलता मिलना ये हाथ की बात नहीं, ये बड़ी चंचल है, क्या पता कौन सफल हो जाए। फिर भी सावधानी के साथ युद्ध करना, अपने प्राणों को पहले बचाना और शत्रु को आप जहां तक हो सके वहां तक प्राण सहित लेकर के आना। ठीक है महाराज, आप इतनी क्या चिंता करते हैं? युद्ध आज जीवन में पहली बार थोड़ी हो रहा है, बहुत दुआ है महाराज। एक बानर के पीछे तो हम इतना क्या करेंगे? इंद्रादि देवताओं के साथ में भी तो युद्ध हुआ था, देवताओं से बढ़कर तो कोई है ही नहीं ना। हम जाते महाराज, आप कोई चिंता मत करो। अब अपने घोड़ों पर और पर सब पर बैठे हुए, रथों पर बैठे हुए और वे वहाँ से रवाना हुए। और जो ही वे तोरण द्वार पर जाकर के महाकपि उनको देखे, हनुमान तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो इतना लाल है जैसे कोई उगता हुआ सूर्य आया है। और जो है ये तोरण द्वार पर खड़ा हुआ महान बल वाला बड़ा उसमें उत्साह है। वो मन में डरने लगे कि इसकी आंखें आंखों से जो तेज निकलता है वो तेज ही बड़ा विचित्र है। सर्वे दिक्षु समीक्षे इव, उन्होंने सब तरह से इधर उधर देख करके और विचार किया कि सामान्य बानर नहीं हो सकता। हमने जैसा मन में समझा था कि हम इसको यूं बस में कर लेंगे, यूं बस में कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। तब उनमें दुर्धर नाम का जो सेनापति था, वो दुर्धर रथ पर बैठा हुआ है और रथ पर बैठ करके हनुमान जी की तरफ सैकड़ों बाण फेंकता है जैसे कोई बरसात ही हो रही हो, इस प्रकार से फेंक रहा है। अर्ध्यमान और हनुमान जी के शरीर पर जगह जगह बाण के घाव हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज किलकारी लगा करके ऊपर छलांग लगा करके और रथ के ऊपर ही हनुमान जी कूद गए। रथ के घोड़े थोड़े सब एक साथ ही पूरे हो गए और दुर्धर भी वहां पर मारा गया। तब उसके उसके बाद विरूपाक्ष और युपाक्ष पांच सेनापति थे, उनमें पहला सेनापति तो हो गया, दो सेनापति एक साथ आए। उन्होंने देखा कि अपने एक साथ दोनों युद्ध करो, तो दोनों ने अपने हाथ में मुदगर लिए हुए और जो है परिघ लिए हुए एक साथ हनुमान जी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। हनुमान जी महाराज ने उनका वो दोनों शस्त्र छीन करके और एक साल वृक्ष को उखाड़ करके और वहीं पर उसको उन दोनों को मारना चालू किया। वो वहीं पर पूरे हो गए, तीन तो पूरे हो गए। अब प्रगस और भास्करण थे, वो एक एक दिशा से आकर के उन पर आक्रमण करने लगे। पट्टी से प्रगस और शूल से भास्करण उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। उन्होंने पर्वत शिखर उठा करके दोनों के ऊपर डाल दिया, वो उनके वहीं पर पूरे हो गए। अब इस प्रकार से भाई अब ये करते ही रहना, यही काम है, यही काम रहेगा, क्योंकि अब ये ऐसी ऐसी कथाएं आएंगी। तो सब प्रकार से भाई वो नष्ट सेना नष्ट हो गई, हाथी घोड़े घुड़सवार सब पूरे हो गए। तब जो है रावण के पास में खबर मिली कि आपके प्रधान पांच सेनापति हैं, वो पांच सेनापति पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। रावण ने जब ये सुना तब रावण ने इधर उधर देखा, देखा तो रावण का बेटा था अक्ष कुमार, अक्ष कुमार को देखा तो शैतस्य दृष्ट्यर्पणसं प्रदीप्त है। तो अक्ष कुमार ने रावण, अक्ष कुमार को रावण ने देखा तो देखने मात्र से अक्ष कुमार समझ गया कि पिताजी मुझे भेजना चाहते हैं। बड़ा प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर कहने लगा, महाराज आप उस बानर से चिंतित मत होइए, मैं आपका बेटा हूँ और अभी रथ में बैठ कर जाता हूँ और अभी इसी रथ के अंदर उसको पटक करके ले आता हूँ। ऐसा शस्त्र लगाऊंगा कि वो वहीं पर संज्ञा शून्य हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसको उठा के ले आता हूँ, कोई चिंता न करे। बड़ा सुंदर सोने का रथ और उसमें घोड़े उसने जुटाए और तरह तरह के शस्त्र उसमें रख दिए। उसके ऊपर ऊंची ऊंची पताका लगी हुई, आठ बड़े बड़े घोड़े लगाए हुए। वो ऐसा था रथ कि वो देवताओं के द्वारा असुरों के द्वारा दुर्धर्ष था, कि इस रथ में इस रथ के ऊपर आक्रमण कर नहीं सकते थे, ऐसा मजबूत रथ था। उसमें आठ तलवारें एक जगह टंगी हुई थी, अष्टासी निबद्ध बंधुरम और बाकी तोमर है, शक्ति है, प्रास है, शूल है, ये सब शस्त्र अपने अपने पर जगह पर रखे हुए थे और बाणों को तुणी रखे हुए थे। इस प्रकार का बड़ा सुंदर सूर्य के समान प्रकाशमान वो रथ था। उस रथ के अंदर अक्ष कुमार जी विराजमान हो गए और वे वहां से अपने महल से रवाना हुए और अशोक वाटिका की ओर चलने लगे तो सब लंका वासी बड़े खुश हो रहे थे। अक्ष कुमार जी तो कुछ न कुछ विशेष रूप से काम करेंगे। तुरंग मातंग महारथ स्वनेही, अब घोड़ों की आवाज, हाथियों की आवाज, सेना की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। हनुमान जी ने देखा कि अब कौन महाशय पधार रहे हैं, जरा उनको भी हम देख लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने तिरछी नजर से देखे, आतुरी भी बड़ी सेना और आतुरा भी बड़ा सा रथ, तो ठीक है आने दीजिए, वो भी आ जाएगा। तो जिस प्रकार से प्रलय के नष्ट प्रलय काल में अग्नि पैदा होती है, ऐसे अग्नि के समान दीप्यमान हनुमान जी ने पतंगे के समान अक्षय कुमार की सेना को देखा। कैसी अग्नि पतंगा! और उस समय में हनुमान जी महाराज थोड़े ऊंचे चले गए और ऊंचे चले जाने के बाद अब अक्षय कुमार को बड़ा क्रोध आया कि अच्छा ये तो पृथ्वी पर न लड़ करके हमको ठगता है, आकाश में जाता है। तब उसने तीखे तीखे बाण हनुमान जी की ओर फेंके। हनुमान जी महाराज ने बड़े गर्व के साथ में कभी तो नीचे होकर, कभी तिरछे होकर, कभी पीछे होकर, कभी और ऊंची छलांग लगा करके उन बाणों को हनुमान जी महाराज व्यर्थ करते चले गए। इधर उधर ऊंचे नीचे होते होते उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध को तो सब लोग बड़े चाव से देख रहे थे कि देखो कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं। वायु प्रचाल चाचल कपे कुमार शौर्य संयुगम ननाद उदिष्ट सुखे। आकाश के अंदर और अपने सागर के अंदर क्षोभ पैदा हो गया दोनों का युद्ध देख करके, क्योंकि कोई भूकंप भी नहीं था लेकिन पृथ्वी डगमगाने लगी और सूर्य का प्रचंड तेज था। अस्त्रों के आदान प्रदान में लड़ते लड़ते इतनी धूल उड़ी, इतने शस्त्र उड़े।